ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी हैं और उनमें भी खास बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया कि बच्चे परोपकारी बनो, रहम दिल बनो, दाता बनो। एक मुरली में बाबा ने कहा कि कोई आपको कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा दे, लेकिन आप बड़े बाप के बच्चे हो, बड़े दिल वाले हो, इसलिए उसने क्या दिया ये मत देखो, लेकिन आप सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। बाबा ने कहा अपनी स्थिति द्वारा किसी न किसी गुण की सौगात दे दो ताकि उसके अंदर इतनी शक्ति भर जाए कि वो अपने को बदल सके। बाबा ने कहा जैसे समुद्र में कितना भी कीचड़ा डालो लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता कि कीचड़ा डालने वालों को मैं वापस कीचड़ा ही दूंगा, संभाल लेता है। तो बाबा ने कहा आप भी तो सागर के बच्चे हो ना, शक्तियों के सागर के बच्चे हो। तो बाबा ने कहा आप भी कोई कुछ भी दे लेकिन भला करो, अच्छा दो, भला सोचो, क्योंकि हम जो भी किसी को कुछ देते हैं वो वापस हमारे पास लौटता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जाते समय जो भला है लौटते वक्त वो लाभ बन जाता है। और किसी ने ये भी कहा है कि भला करने वाला सदा भरपूर रहता है और लेने वाला, मांगने वाला सदा खाली रहता है, कितना भी ले ले फिर भी उसे लेने की जरूरत पड़ेगी, और देने वाला कितना भी दे दे फिर भी उसमें देने की शक्ति बनी रहेगी। जैसे हम देखते हैं कि बादल तो देता है और सागर लेता है, लेकिन फिर भी देने वाला बादल हमेशा ऊंचा रहता है और लेने वाला सागर हमेशा नीचा रहता है। बादल दे दे करके बेशक खाली भी हो जाए तो भी रहेगा ऊंचा, और सागर ले लेके बेशक भर भी जाए फिर भी रहेगा नीचा। तो बाबा ने कहा आप ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हो, सदा देते रहो। और ऐसा नहीं है कि बादल दे दे के खाली हो गया, अब दोबारा कैसे भरेगा? वो भी नेचर ने उसके लिए विधि बना रखी है। जिसको दिया उससे नहीं मांगता कि सागर तू मुझे दे दे, नेचर ने एक ऐसी प्रक्रिया बना रखी है कि वो उसको पुनः भरपूर कर देती हैं और वो फिर बरसता है। यदि कोई व्यक्ति भला करे और उसे भूले नहीं, कहते हैं ना भला करो और भूल जाओ, भला तो करे पर भूले नहीं, तो दो रिजल्ट निकल सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये होगा कि उसको ईगो आएगा, मैं बहुत करता हूं, मेरे जैसा करने वाला कोई भी नहीं है, अगर मैं ना करता तो अमुक व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता था, और जगह जगह अपने किए हुए का वर्णन करेगा, वाह वाही लूटेगा, और जब वर्णन करेगा तो जिसका भला किया होगा उसको तो बहुत फील होगा, सबके बीच में मेरे बारे में क्या क्या बोलता है। इस पर एक छोटी सी घटना सुनाते हैं कि एक बार एक मुल्ला जी पानी में डूब रहे थे, बहुत कोशिश की कि मैं पानी से बाहर आ जाऊं लेकिन नहीं आ पाया, तो उसका एक मित्र किनारे पे खड़ा था, वो उस पोखर में कूद गया और मुल्ला जी को बाहर निकाल के ले आया। अब जब कभी भी कहीं संगठन होता और ये मित्र मिलता तो सबके बीच में बताता कि देखो भाई अमुक दिन तो मुल्ला जी बस चले ही गए होते, अगर मैं ना होता तो ये आज इस दुनिया में ना होते, अगर ये आज हमें दिख रही हैं तो मेरे कारण है। तो मुल्ला जी ने एक दो बार तो उसका शुक्रिया माना, उसका एहसान भी माना, लेकिन जब रोज रोज ही ये कुछ हो गया तो मुल्ला जी भी बेचारे थक गए और एक दिन अपने उस मित्र को लेकर के फिर उसी पोखर के पास गए। उसमें थोड़ा पानी कम हो गया था, उसके अंदर चले गए, कंधे तक पानी आया और अपने मित्र को कहा, देख अभी मैं पोखर में हूं और तेरी मदद के बिना भी जिंदा हूं और तेरी मदद के बिना बाहर भी निकलूंगा। तो मित्र को समझ में आया कि मैंने मदद तो की लेकिन बार बार वर्णन करता हूं तो इसको कितना हर्ट होता है, और उसके बाद उसने कहना बंद कर दिया। एक दूसरा भाव भला करने के बाद व्यक्ति को यह भी आता है कि मैंने इतना किया पर उसने बदला ही नहीं दिया, मुझे पूछता भी नहीं है। तो कई बार दे करके भला करके व्यक्ति दुखी हो जाता है, हालांकि दिया तो इसलिए जाता है कि हमें सुख मिले, लेकिन हम दे के भी दुखी हो जाते तो फिर दिया ही क्यों जाए अगर दे के सुखी ना मिले। तो किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई चीज है, वस्तु है, गुण है, तो वो दो तरह से उसका प्रयोग करता है। एक प्रयोग करता है कि व्यापार करे, क्योंकि ज्यादा है, जमीन है, धन है, मकान है, उसकी इन्वेस्टमेंट करे, और दूसरा तरीका होता है कि उपकार करें। तो जब हम व्यापार करते हैं तो बदले की इच्छा रखते हैं, भाई मैंने बैंक में 1 लाख रुपया डाला तो मेरे को 5-10 हजार ब्याज मिले, मैंने मकान किराए पे दिया तो मुझे इसका रेंट मिले, जमीन किसी को दी तो उसके बदले में भी अनाज मिले या जो भी उसका पैसा मिले। लेकिन जब व्यक्ति परोपकार करता है तो कभी भी बदले की इच्छा नहीं रखता। परोपकार का मतलब है नेकी कर दरिया में डाल, और दरिया में इसलिए कहा कि वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, इतना उसको गहरा छिपा दो, भला करके इस तरह से उसको भुला दो कि ना खुद को पता पड़े ना किसी दूसरे को पता पड़े। अब हम देखते हैं कि कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि मैंने अमुक व्यक्ति का भला किया, इंटरव्यू दिलवाया, नौकरी लगवाई, अब वो बहुत पैसे कमाता है लेकिन कभी फोन भी नहीं करता, हालचाल भी नहीं पूछता। तो हम उसको पूछते हैं कि भाई आपने ये जो उसको मदद की थी ये व्यापार किया था कि परोपकार किया था? अगर आपने व्यापार किया था तो आपको उस समय लिखत लेनी थी, भाई मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूं, इतने समय के बाद मुझे इतना लौटा देना। और अगर आप कहते हो नहीं जी मैंने तो परोपकार की भावना से किया था, तो फिर अब याद क्यों कर रहे हो कि मैंने इंटरव्यू दिलवाया और मैंने नौकरी लगवाई और मैंने पांव पे खड़ा किया? तो एकांत में बैठ करके हम अपने आप से पूछें कि मैं अगर किसी व्यक्ति के लिए कुछ करता हूं तो मैं किस उद्देश्य से करता हूं? व्यापार करता हूं तो उसी समय अपना प्रॉफिट निर्धारित करूं, और अगर परोपकार करता हूं तो उसको भूल जाऊं। इस स्थिति में हम भीतर से बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, और नहीं तो अंदर ही अंदर संकल्प और विकल्पों का तूफान मचता रहेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे दाता बनो, देते जाओ, गिनती नहीं करो। और ये भी कहा जाता है कि जैसे दूध में मक्खन होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, इसी तरह से परोपकार में भी स्व उपकार समाया रहता है पर दिखता नहीं। समय आता है और उस परोपकार में समाया हुआ स्व उपकार प्रकट हो जाता है लेकिन रहता है गुप्त, समाया रहता है। हम देखते हैं कि प्रकृति का एक नियम है, जो चीज हम देते हैं वो लौट के आती है बिना मांगे बिना बुलाए। गेंद को जमीन में मारते हैं तो देखो कितना जोर से वापस लौटती है, हमने कहा थोड़े था कि तुम वापस लौटो लेकिन लौट आई। तो ये प्रकृति का नियम है, इसलिए देना वास्तव में देना नहीं है लेकिन लेना है, और लेना वास्तव में लेना नहीं है लेकिन देना है, क्योंकि देना माना बीज बोना। तो जैसे अपन बीज बोते हैं तो वो बीज तो वापस लौटता है कई गुना होके, तो इसी तरह से चाहे अपन किसी को सम्मान दें, प्यार दें, शक्ति दें, शुभ भावनाएं दें, सहयोग दें, रहम करें, माफ करें। ये जो भी कुछ हम देंगे वो हमें वापस मिलेगा, उससे भी वापस मिलेगा। और चूंकि हम बाबा की श्रीमत पालन करेंगे तो बाबा से भी दुआ मिलेगी। कहते हैं एक बार एक संत था जिसे दिखाई नहीं देता था, सब्जी बेचने का काम करता था, तो लोग फायदा उठाते थे उसके ना दिखने का, खोटे पैसे रख जाते और सब्जी ले जाते। उसको दिखता था ही नहीं, कुछ बोलता था ही नहीं। तो एक दिन जब अंतिम घड़ी आई तो उसने भगवान को कहा कि मैं एक खोटा सिक्का हूं और आज आपके पास आ रहा हूं, तो मुझे स्वीकार कर लेना। तो भगवान ने कहा तूने जीवन भर लोगों के खोटे सिक्के स्वीकार किए, तो आज तेरा भी स्वागत है। तो जब हम संसार के लोगों का सब कुछ समा लेते हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं, तो भगवान हमारा भी सह लेता है, सुन लेता है। अगर हम कहते हैं कि भगवान हमें क्षमा करे तो हम भी तो क्षमा करें। अगर हम कहते हैं भगवान हमारी भूलों को भुला दे तो हम भी तो दूसरे की भूलों को भुला दें। देने की शक्ति वास्तव में आती कब? कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं क्या होता है, चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं। इसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी बात सुनाई है कि दूसरों को देने से पहले खुद भरपूर होना पड़ता है। जो चीज भर जाती है उसी में से पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब तक वो खुद ना भरे तब तक तो वो खुद ही ले रही है, तो बाहर कैसे निकले? जब मटका पानी से पूरी तरह से भर जाता है तब उसमें से पानी बाहर निकलता है। बर्तन दूध से भर जाता है तो उसमें से दूध बाहर निकलता है। अब बाबा ने हमें जो सृष्टि चक्र का राज समझाया तो ये बताया कि सतयुग में तो आप पूरी तरह से फूल थे, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है। पूर्णमासी का चंद्रमा कितनी रोशनी देता है, फूल है ना, फूल मून है ना। और फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गई तो रोशनी देना भी कम हो गया, और धीरे धीरे कलाएं इतनी कम हुई कि अमावस्या आ गई। अब वो क्या रोशनी दे, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, सारी खर्च हो गई। तो ऐसे ही बाबा कहती हैं आत्मा का भी एक नाम है सोम, चंद्रमा को भी सोम कहती हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ा सोमनाथ। और आत्मा का भी एक नाम है सोम। तो आत्मा भी जब फुल मून की तरह से थी तो भरपूर थी, ऑटोमेटिक सब दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे कलाएं कम हुई। और इस अंतिम जन्म में तो आत्मा की कलाएं इतनी कम हो गई कि वो खुद शांत रहे, इतनी शांति भी उसके पास नहीं, वो खुद प्रेम से तृप्त रहे इतनी भी प्रेम की शक्ति उसके पास नहीं है और वो खुद पवित्र रहे, इतनी पवित्रता की ताकत भी उसके पास नहीं। अब वो किसी को शांति कैसे दे और किसी को प्रेम कैसे दे और किसी को पवित्रता कैसे दे जब खुद के पास ही नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया कि पहले ये चिंता मत करो कि मैं दूसरे को कैसे दूं, पहले ये चिंता करो कि मैं खुद को भरूं कैसे, ये लगन रखो। जब स्टॉक भरपूर हो जाता है तो अपने आप वितरण होता है। मान लीजिए किसी के पास जीवन निर्वाह की बहुत थोड़ी सी चीज है तो पहले अपना जीवन निर्वाह करेगा, भाई मेरा खाना पीना ठीक हो, थोड़ी ज्यादा चीज हो तो जो अपने नियर एंड डियर होंगे उनको देगा, थोड़ी और बढ़ेगी तो अपने पारिवारिक सर्कल को देगा, थोड़ी और बढ़ेगी समाज के लोगों को देगा, और ज्यादा बढ़ेगी तो सारे देश को देगा, और अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तो सारी दुनिया को याद करेगा, भाई मेरी चीज सब तक पहुंचे। तो ऐसे ही हम बच्चों के भीतर जितनी जितनी शक्तियां फुल होती जाती हैं उतना उतना ऑटोमेटिक देने का ख्याल आता है, बिना संकल्प के चीजें दी जाती हैं क्योंकि भर गई ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक एक मिनट बचा बचा करके भी अपने भीतर भरो। बाबा तो हर घड़ी देने के लिए तैयार है, भरना आपको है, अपने को पहले भरपूर करो, बाबा से ले लेकर के अपने को भरपूर करो। और ये भी अपने को पता पड़ता है कि कौन सी शक्ति की कमी है जिसको मैं भरूं। सारा दिन में जब कर्म करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं तो पता पड़ता है भाई किसी को देख करके व्यर्थ ख्यालात चलते हैं, तो समझ में आता है कि भीतर पवित्रता की शक्ति की कमी। किसी को देख करके इरिटेट हो जाते हैं तो समझ में आता है भी धैर्य की शक्ति की कमी है। किसी बात में थोड़ा उद्विग्न हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं तो समझ में आता है कि शांति की शक्ति की कमी है। किसी किसी से बहुत लवफुली आंसर नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते तो समझो प्रेम की शक्ति की कमी है। कहीं किसी की बात सुन नहीं पाते, समाधान नहीं दे पाते, नम्रता की कमी है। तो सारा दिन में हम देखें कि कहां कहां मेरे से सदव्यवहार में चूक होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं आपको बाप समान मीठा बनना है, बाप समान मिलनसार, बाप समान समाने वाला, बाप समान हर गुण में बाप समान बनना है। तो ये कंपैरिजन तो हमको करना है ना कि बाबा का व्यवहार कैसा है और मेरा कैसा है, क्या मैं उतना मीठा हूं। अगर नहीं हूं तो मैं कैसे इस कमी को पूरा करूं। और बाबा ने वो विधि भी बताई है कि बच्ची जो जो डेफिशिएंसी है उसको मेरे से कनेक्ट होकर के पूरा करो। और बाबा ने ये भी कहा है कि आप जो भी संकल्प करेंगे, संकल्प की सिद्धि है, आप संकल्प करो कि बाबा इस जगह मेरे से चूक हो जाती है और बाबा आपकी उस चूक को पूरा करेंगे। जैसे लौकिक दुनिया में हम देखते हैं कि विज्ञान बड़ा एडवांस हो गया है, अभी हम उस स्थिति में हैं कि एक बटन दबाओ और हमें जो चाहिए वो चीज हाजिर हो जाती है। इतनी तरह की मशीनें हैं, इतने ऑप्शन हैं, एक ही मशीन में आपको स्कैनिंग करनी है कि फोटोकॉपी करनी है कि आपको मेल भेजना है कि आपको क्या करना है, वो एक बटन दबाया और आप जो चाहती हैं वो चीज आपको मिल जाती है। बाबा भी कहती हैं बच्ची साइलेंस की भी इतनी शक्ति है कि आप एक संकल्प करो कि मुझे बाबा से ये चाहिए और बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, सर्व प्राप्तियों के सागर हैं, आप संकल्प करेंगे अर्थात संकल्प का बटन दबाएंगे और आपको वो चीज मिल जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने सारे दिन के व्यवहार का चार्ट बनाओ और आपको लगता है कि मेरे में सहनशीलता की कमी है तो अमृत वेले बाबा को ये संकल्प दो, बताओ कि मुझे जो खजाना बाबा से मिला है उसमें से सहन शक्ति की अर्जेंट आवश्यकता है, इसके बिना सारा दिन मेरे से कई दुर्घटनाएं होती हैं। और आप देखेंगे कि जिस दिन आपने ये संकल्प किया, इस संकल्प से आप में सहन शक्ति आई और उस दिन सारा दिन जितनी भी परिस्थितियां आई आप बहुत ही सहनशील रहे, नम्र रहे और बहुत ही सरलता से आपने उनको पार कर लिया। तो इसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ा, केवल एक बटन दबाना पड़ा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे आपका काम केवल संकल्प करना है, आगे का काम बाबा का है। तो भगवान सिर्फ एक संकल्प मात्र से हम जो चाहें वो देने के लिए बंधायमान है। तो संपूर्ण बनने में हमें क्या डिफिकल्टी है, सिर्फ अपना चार्ट रखें, अपनी चेकिंग करें और अपनी कमियों को भरने के लिए संकल्प रखें कि मुझे संपूर्ण बनना ही है और इस कमी को मिटाना ही। ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है, हम सबके लिए करने योग्य है, बहुत सरल है क्योंकि बाबा ने अमृत वेले के समय को बहुत ही वरदानी समय बताया है। और कई मुरलियों में बाबा ने ये भी कहा है कि अमृत वेले बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं और कई बच्चे तो छिप जाते हैं, नजर नहीं आते हैं, लेकिन बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं। तो इतना बड़ा बाबा और इतने बच्चे, लेकिन फिर भी बाबा की नजर हर बच्चे पर होती है, तो हमें कितना गर्व होना चाहिए कि हमारा बाबा हमारे पे कितनी मेहनत करता है और कैसे हमारे संकल्पों को सिद्ध करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे बाबा हमें टाइटल देते हैं कि बच्चे इस विश्व के सबसे बड़े शुभचिंतक, सबसे बड़े कल्याणकारी परोपकारी आप बच्चे हो, इसलिए भक्त लोग आपकी महिमा में कितने बड़े बड़े टाइटल आपको देते हैं और कितना आपका आह्वान करते हैं क्योंकि आपने संगम युग में प्रैक्टिकल में कल्याण का काम किया है, परोपकार का काम किया है। कल्प पहले की यादगारें भी इस बात का प्रमाण है कि हम बाबा के साथ साथ मास्टर विश्व कल्याणकारी बने हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब इस सारे विश्व के लिए कल्याण का अपन एक भी संकल्प करते हैं तो अपन ने तो वो संकल्प एक सेकंड में किया, चलिए एक मिनट भर किया, लेकिन विचार कीजिए कि विश्व की 700 करोड़ आत्माएं उन सबसे रिटर्न में अपने को उतना ही कल्याण का फल मिलेगा, क्योंकि अपन किसके लिए कर रही हैं, सारे विश्व के लिए कर रही हैं, तो रिटर्न भी किससे मिलेगा, सारे विश्व से मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमारी जो आंतरिक शक्ति है, जो देह के भान के कारण, बाबा ने कहा था बच्चों में देह अभिमान तो नहीं लेकिन देह का भान भी बना रह जाता है, तो देह अभिमान तो बहुत कड़ा है लेकिन देह का जो भान है उसके कारण भी हमारी परोपकार की कल्याण की शक्तियां कई बार दब जाती हैं। इसलिए बाबा बार बार हमें अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे एकांत में बैठ करके चिंतन करो कि मेरा जो मूल स्वरूप है वो वास्तव में कल्याणमय है, शुभ चिंतक का है, ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। और ये जो देह है इसको तो कहा ही गया है कि ये शरीर मरण धर्मा है। मरण धर्मा का अर्थ होता है कि मरना इसका धर्म है। जैसे आत्मा का धर्म है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, या आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसी तरह शरीर के लिए मरण धर्मा शब्द प्रयोग होता है। और जो इसका धर्म है उसको तो ये निभाएगा ही, और इसलिए हम सब विचार करें कि आज हम भले ही बड़े हो गए हैं शरीर से, लेकिन जब ये शरीर जन्मा बहुत छोटा था, बहुत कम वजन था, पर वो शरीर गया कहां? ऐसा है क्या कि हमने उसको कहीं छिपा के रखा हुआ है? 5 साल वाला शरीर कहां गया? 10 साल वाला शरीर कहां गया? 15 साल वाला शरीर कहां गया? कहीं छिपा के रखा हुआ है क्या? उस समय के कपड़े हो सकता है कहीं टांग रखे हो, रख रखे हो, लेकिन शरीर कहां गया? उस समय की बातें तो सारी स्मृति में, गया कहां, बदल गया, या कहेंगे नष्ट हो गया। तो ये पल पल बदलता है, नष्ट होता है। विज्ञान भी कहता है कि इसकी जो पुरानी सेल्स है वो डेड हो जाती हैं और नई सेल्स आ जाती। तो जो पल पल परिवर्तनशील है, जो पल पल नष्ट हो रहा है, भले हम कितना भी प्रयास कर लें, संभाल कर लें, खिला लें, लेकिन फिर भी ये अपनी आदत नहीं छोड़ता, मरना इसका स्वभाव है। इसलिए इसकी ओल्ड सेल्स जाएंगी ही जाएंगी और एक दिन ये रूप बदलते बदलते फाइनल चला जाएगा। और मैं आत्मा जो कल भी थी आज भी हूं और कल भी रहूंगी। तो बाबा कहती हैं जो सदा रहने वाली है उसको आप भूल जाते हो, और जो पल पल जा रहा है उसकी आपको स्मृति रहती है। क्यों? इसलिए बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अपने स्वरूप में अगर टिके रहेंगे तो आपकी संपूर्ण शक्तियां काम करती रहेंगी। हमें बाबा से जो शक्तियां मिलती हैं, ये शरीर वास्तव में उन शक्तियों को ट्रांसमिट करने में एक कर्टन बन जाता है, ट्रांसमिट होने नहीं देता है। लेकिन जितना जितना हम इस पर्दे से बाहर रहती हैं, उतनी उतनी हम अपनी शक्तियों को सारे विश्व के कल्याण में लगा सकते हैं, और जो देते जाते हैं वही बदले में कई गुना होकर के पाते जाते हैं। तो वास्तव में ये प्राप्ति का एक बहुत सुंदर तरीका है कि हम देते जाएं, अहर निशम देते जाएं, ताकि हम खुद भरपूर होते जाएं। हम देखते हैं कि जब जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में टिकते हैं, एकदम हल्के लाइट और बड़ी बेहद की स्थिति का अनुभव करते हैं, और बाबा से बड़ी समीपता की अनुभूति होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब बच्चे आत्म स्वरूप में या फरिश्ता स्वरूप में मेरे से मिलन मनाते हैं तो साकार जैसा अनुभव करवाता हूं मैं। बच्चों को फिर ये शिकायत नहीं रहती कि बाबा आप साकार में क्यों नहीं मिले, या हमें साकार में समीपता से मिलने का अनुभव क्यों नहीं होता है। बाबा ने कहा बच्चे साकार की तो फिर भी लिमिटेशन है, लेकिन अव्यक्त में तो आप बाबा से कितनी भी देर, किसी भी समय और किसी भी संबंध से बाबा से मिल सकते हो। तो हम देखते हैं कि बाबा ने हमारे लिए ये कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी बनाई है, तो हम अधिक से अधिक इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। और जैसा कि समय हमें इशारा दे रहा है, बाबा ने तो ये भी कहा था बच्चे ये सारा मधुबन ऐसे हो जाएगा जैसे अव्यक्त फरिश्ते घूम रहे हैं, बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपकी अव्यक्त स्थिति ही रूहों को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने का अनुभव कराएगी, अव्यक्त वतन बन जाएगा ये। तो हम सब बाबा के बच्चे दृढ़ता के साथ अपनी दृढ़ अव्यक्त स्थिति बनाएं, और प्यारे बाबा जो सर्व शक्तियों के भंडार हैं, प्यार के भंडार हैं, जो सर्व खजाने हमें देने के लिए हमेशा रेडी हैं, हम समय का फायदा उठाएं। क्योंकि अंत समय में बाबा ने कहा आप बच्चों को बहुत काम करना है, अभी तो फिर भी आप अपने लिए थोड़ा बहुत समय लगा लेते हो, लेकिन अंत समय में आपके भक्त और दूसरी आत्माएं इतनी होंगी कि आपको देने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और बाबा ने ये भी कहा कि अपनी प्रवृत्ति को समेटते जाओ, अर्थात अपने देह के कार्य या और जो भी कार्य हैं उनको मिनिमम करते जाओ, ताकि आपके पास अधिक से अधिक समय लोगों की आशाओं को पूर्ण करने के लिए बचे। तो इसके लिए हमें बार बार अपने पर अटेंशन देना है कि मेरी जो शक्तियां हैं वो कहीं लीक तो नहीं हो रही है। मैं अपनी शक्तियों को जमा करूं, कहीं मैं व्यर्थ देखकर, व्यर्थ सुनकर, व्यर्थ बोलकर शक्तियों को लीक तो नहीं करता हूं। जहां देखने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना इंद्रियों को काम में लगाएंगे हमारा स्टॉक खाली होगा, और जितना इंद्रियों को समेट करके अव्यक्त स्थिति में रहेंगे स्टॉक भरेगा। जैसे कोई टैंक होता है ना, उसमें कई नल लगे होते हैं, तो नल से तो पानी बाहर निकलता है, तो इंद्रियां नल की तरह से, इनसे पानी बाहर निकलता है। लेकिन जब हम इन नलों को बंद करके और जैसे अपने स्वरूप में टिकते हैं, तो ये जैसे उस टैंक का ऊपर का मुख है जिसमें से पानी टैंक में भरता है, जैसे वो मुख खुल जाता है, तो जैसे हमारा लिंक बाबा से जुट जाता है और हमारी आत्मा रूपी टैंक में शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारा ज्यादा समय शक्तियां भरने में जाता है या ज्यादा समय उन शक्तियों को लीक करने में जाता है, परसेंटेज किसकी ज्यादा है। अगर भरने की परसेंटेज ज्यादा है तो स्पष्ट है कि हम बहुत शक्तिशाली बनेंगे, और अगर हम भरते हैं थोड़ा सा समय और सारा दिन इंद्रियों से बाहर निकालते हैं, देखते बोलते सुनते, तो स्पष्ट बात है कि हम आत्म बल में खाली मिलेंगे, और हम खाली मिलेंगे तो फिर बाबा ने हम बच्चों को जो काम दिया है, जो लक्ष्य दिया है, इतना बड़ा विश्व और उसकी सेवा का जो हमारे सामने उद्देश्य रखा, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। प्यारे बाबा के राइट हैंड बन करके बाबा के कार्य में मददगार कैसे बनेंगे। तो हम ऐसी योजना बनाएं, जैसे कहती हैं कि कभी भी कोई संपत्ति किसी के पास एक साथ नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा करके वो इकट्ठी होती है। ऐसी योग बल भी थोड़ा थोड़ा करके हम इकट्ठा करें, जब भी समय मिले बैठ जाएं, भीतर उतरें और अपने से सवाल पूछें कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे संकल्पों की क्या दिशा है। अगर मैं इस बात को ना भी सोचूं तो भी तो मेरा काम चल सकता है। और इस विचार से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, और इस विचार से वातावरण में क्या वाइब्रेशन फैल रही है, इस समय मेरे खाते में जमा हो रहा है कि घटा हो रहा है। कहते हैं जो दूसरों को जानता है, दूसरों को देखता है, वो समझदार है, लेकिन जो अपने को बार बार देखता है वो ज्ञानी है। तो बाबा ने हम बच्चों को काम दिया, खुद को देखो और खुदा को देखो, बस दो को देखो। बार बार हम खुद को देखें और बार बार बाबा को देखें तो कितने भरपूर हो जाएंगे, और जितने भरपूर होंगे उतना भला करेंगे, और जितना भला करेंगे उतना फिर बदले में भला पाएंगे, लाभ पाएंगे। भारत के एक बहुत फेमस सन्यासी हुए हैं, उनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। उनके जीवन की एक घटना सुनाते हैं कि वो दूध पीने के बहुत शौकीन थे, तो एक हलवाई से दूध लिया करते थे। तो एक बार उनके पास पैसे नहीं थे पेमेंट करने के लिए, महीने भर उधार हो गया। उसके बाद लाहौर के कॉलेज में उनकी एक लेक्चरर के रूप में पोस्टिंग हो गई। तो जब उन्हें पेमेंट मिलने लगी तो मनी ऑर्डर करके उस हलवाई के पास पैसे भेजते रहे। 7 महीने लगातार भेजते रहे। 7वें महीने हलवाई को लाहौर जाना पड़ा तो उनसे मिले और उनको कहा, भाई आपकी तो एक ही महीने की पेमेंट थी और ये 7 महीने से लगातार मनी ऑर्डर आ रहा है, वो सारे पैसे मैं इकट्ठे करके वापस ले आया हूं, अब आप और मत भेजना, मैंने 1 महीने का पैसा रख लिया है। तो उन्होंने कहा, देखो जो किसी से चीज ले लेता है लेकिन वापस नहीं देता, उसकी गिनती तो मनुष्य के स्तर से काफी नीचे है, लेकिन जो जितना लेता है उतना ही देता है उसे अब मनुष्य कहते हैं, और जो जितना लेता है उससे ज्यादा देता है उसको मनुष्य से ऊंचा कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा लेता है कई गुना देता है, एहसान भी मानता रहता है और उस लिए हुए को भूलता नहीं है लेकिन जीवन भर उसका रिटर्न देता ही रहता है, वो तो वास्तव में प्रभु समान हो जाता है। तो मैं तो केवल प्रभु समान बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक सांसारिक व्यक्ति किसी के किए हुए भले का कितना परोपकार मानता है, वो तो एक सांसारिक व्यक्ति था। और बाबा भी बच्चे किसी बच्चे के थोड़े से किए हुए की कितनी महिमा करते हैं, मेरा बच्चा कितना ऊंचा है, कितना लायक है और उसका कितना बड़ा रिटर्न देते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे लिए एक कदम चलोगे तो उसका पदम गुना रिटर्न बाबा बच्चों को देंगे। तो ऐसे ही हम भी बाबा से ये सीखें कि हम देते चलें, निस्वार्थ भाव से देते चलें, किसी ने हमारा थोड़ा भी भला किया हम उस एहसान को सदा याद रखें, लेकिन हम अगर किसी का थोड़ा भी भला करें तो उसे भुला दें, और देने की कोई सीमा नहीं होती है क्योंकि देने वाला सदा भरपूर रहता है। तो बाप समान भरपूर बनने का हम सदा लक्ष्य रखें क्योंकि हमको देवता बनना है। ओम शांति।
करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो जीवन के जीने की ये है कला, इसके बिना जीवन क्या है भला। जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। जीने की ये है कला।